हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। निवेदिता ने डरते हुए उस एनवेलप को खोला तो उसमें कुछ तस्वीरें थीं, जिसमें रूहान कभी मोहिनी के साथ था तो कभी अंजलि के साथ। निवेदिता मोहिनी को जानती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये तो मोहिनी है, रूहान की बहुत अच्छी दोस्त है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। राधेश श्याम ने गुस्से का घूंट भरते हुए कहा, फोटो दूसरी लड़की के बारे में तो दामाद जी ने आपको कभी बताया ही नहीं होगा, और दूसरी लड़कियाँ आपके बेटे की दोस्त हों या ना हों, मुझे अपनी बेटी के पति की इतनी करीबी किसी दूसरी औरत के साथ बिल्कुल पसंद नहीं आई है। हम मिडिल क्लास फैमिली से जरूर हैं, लेकिन हमारी बेटी की जिंदगी में हम ऐसी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे जिससे उसे घुट घुट कर जीना पड़े। अपने पति का दूसरी औरतों से संबंध देखकर उस पर क्या बीतेगा, मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ। इतना बोलते बोलते राधेश श्याम का गला भर आया तो काशी ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए आंखों ही आंखों में उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वही रूहान तो जैसे सुन हो चला था, उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी सफाई में क्या बोले। हाँ, अंजलि उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन है नहीं, और उनके बीच कभी कोई संबंध था ही नहीं। और इन सब में क्या सच में अनाही को ये रिश्ता बोझ लगेगा? उसे फिलहाल न राधेश श्याम के तानों से फर्क पड़ रहा था, न ही काशी के कुछ बोलने से। वो परेशान था तो बस अनाही के बारे में सोचकर। आखिर वो कैसे रिएक्ट करेगी? राधेश श्याम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, दामाद जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब क्या है? सब लोगों की नज़रें अपने ऊपर देखकर रूहान और भी ज्यादा नर्वस हो गया था। फिलहाल उसका बचाव करने वाला कोई नहीं था। उसने उम्मीद भरी नज़रों से माधवी की तरफ देखा, क्योंकि यहाँ खड़े लोगों में सबसे ज्यादा भरोसा उसे माधवी पर ही था। वो जल्दी से माधवी के पास जाकर उसके सीने से लगाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया है और मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं मानता हूँ पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब नहीं है। प्लीज इसे बोलिए कि ये मैडम जी को इस बारे में कुछ न बताएं। रूहान डरते हुए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह माधवी से मदद मांग रहा था। माधवी ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए धीरे से कहा, बच्चे, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उन्होंने रूहान को खुद से अलग किया और फिर राधेश श्याम के पास जाते हुए धीरे से बोली, देखिए, गलती सबसे होती है। हो सकता है रूहान का संबंध पहले हो भी इन लड़कियों से, लेकिन अभी वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे बहुत संभाल कर भी रखता है। मुझे नहीं लगता आपकी बेटी को रूहान के साथ रहने में कोई परेशानी होगी। इतना बोलकर माधवी ने निवेदिता के हाथों से तस्वीर लेकर ध्यान से देखा। वो इन दोनों लड़कियों को पहचानती थी। रूहान का डर के मारे गला सूख रहा था, उसके हाथ भी थरथरा रहे थे। वो कैसे भी करके अनाही से बात करना चाहता था, ताकि किसी और के बताने से पहले वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके। पर उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो अपना फ़ोन निकालकर अनाही का नंबर डायल कर सके। उसके माथे से पसीने की बूंदें झलक रही थीं। निवेदिता जल्दी से उसके पास गई और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, रोहन, डरना बंद करो, तुम्हारी मैडम जी तुमसे दूर नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ अनाही को, वो तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी। रूहान की आंखों में पानी आ गया था। उसने उम्मीद से निवेदिता के चेहरे को देखा तो अगले ही पल निवेदिता ने बहन प्लेट हुए उसे गले लगा लिया। रूहान भी बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह उनके सीने से लगा लंबी लंबी सांस लेने लगा। माधवी ने उसका ये हाल देखकर राधेश श्याम की तरफ देखा, जो खुद भी हैरान था। रूहान का ऐसा रिएक्शन देखकर माधवी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली रूहान को थोड़ा ट्रॉमा है, इसलिए वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर कई बार पैनिक हो जाता है, उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। आप फिक्र मत करिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप बैठे हैं, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। राधेश श्याम ने गुस्से में कहा, यहाँ हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है और आपको चाय नाश्ते की पड़ी है। इतने में ही वहाँ राविया हाथों में एक प्लेट लेकर आ चुकी थी, जिसमें चाय के कप रखे थे और साथ में कुछ कुकीज भी। उसने वो ट्रे जल्दी से टेबल पर रखते हुए अपना फ़ोन निकाला। उसने जल्दबाजी में अनाही का नंबर डायल किया ताकि यहाँ के हालात के बारे में बता सके। वहीं अनंत ने भी रूहान को सोफे पर बैठे हुए उसके हाथ में एक पानी का ग्लास देकर कहा, अगर तुम ऐसे करोगे तो इनको सच में लगेगा कि तुम्हारा कोई अफेयर था, प्लीज शांत हो जाओ। रूहान ने पानी पीकर ग्लास वापस टेबल पर रखा और फिर उठकर राधेश श्याम के पास जाते हुए धीरे से बोला, देखिए, मैं मानता हूँ कि अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन शादी से पहले, उसके बाद में नहीं। राधेश श्याम ने गुस्से से रूहान को घूरते हुए कहा, क्या इस बारे में अनाही को पता है? उसके बावजूद वो तुम्हारे साथ रहती है? रूहान ने जल्दी से नमी करता नहीं लाते हुए कहा, नहीं, मैंने मैडम जी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि किसी वक्त मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। कौन थी, कब थी, ये सब उन्होंने नहीं पूछा। काशी ने गुस्से में कहा, और सामने से कभी आपने बताया नहीं, हमारी बेटी के साथ धोखा होता रहा। और ये दूसरी फोटो, ये तो कल परसों की है, जिसने हमें ये फोटो दी उस लड़की ने बताया था। काशी मोहिनी के बारे में बात कर रही थी। रूहान की नज़रें झुक गईं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो और सफाई दे सके। वहीं दूसरी तरफ अनाही एक फाइल के पन्ने पलट रही थी, जब उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देखकर आंखें छोटी करते हुए कहा, इस राविया को इस वक्त मुझे क्या काम है। एक गहरी सांस लेते हुए अनाही ने कॉल उठा लिया और फिर सामने से राविया के बोलने का इंतज़ार करने लगी। राविया ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए धीरे से कहा, दी, क्या आप इस वक्त घर आ सकती हैं? बहुत ज़रूरी है, यहाँ आपके मम्मी पापा आए हैं। अनाही ने चौंकते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा हैं, आर यू श्योर? राविया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और वो रूहान जीजू को बहुत बुरी तरह डांट रहे हैं, जिससे रूहान जीजू परेशान हो गए हैं। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। रूहान का जिक्र होते ही अनाही के चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी। उसने एक भी पल ना गंवाते उसे जल्दी से फ़ोन कट किया और फिर दौड़ते हुए अपनी केबिन से वेदांत के केबिन में गई, जहाँ वेदांत जूली से कुछ डिस्कस कर रहा था। उसने जब देखा कि अनाही दरवाज़ा बिना नॉक किए अंदर आई है, तो उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, माही, सब कुछ ठीक है ना? तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो? अनाही ने जल्दी से कहा, वो मैं आपको ये बताने आई थी कि मुझे घर जाना है, मेरे मम्मी पापा आए हैं। आई एम रियली सॉरी, आप मेरे केबिन में संभाल लीजिएगा, लैपटॉप भी ऑन है और सारी फाइल भी खुली हुई हैं, उनको संभाल लेना। जूली, बाय, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उसने वेदांत के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और लगभग दौड़ते हुए वहाँ से बाहर चली गई। वेदांत भी जल्दी से अपनी चश्मा उठाते हुए बोला, ऐसा भी क्या हुआ है, मैं भी चाहता हूँ। और वो भी दौड़ते हुए अनाही के पीछे पीछे आया। अनाही जो बस कब वाले का इंतज़ार ही कर रही थी, उसे देखकर वेदांत ने जल्दी से कहा, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, हम दोनों चलते हैं। ये देखकर अनाही ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद वो दोनों वेदांत की गाड़ी में बैठकर निमानी हाउस के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते अनाही परेशान थी। वेदांत ने उसे शांत करवाते हुए कहा, तुम परेशान होना बंद करो, तुम्हारे घबराने से कौन सा कुछ गलत हुआ है, वो सही हो जाएगा। और हो सकता है ना कि उन्हें टमाटो की और तुम्हारी बहुत याद आ रही हो, इसलिए वो यहाँ आ गए हो। टमाटो को भी तो घर की कितनी याद आती है, अब उनकी घर की रौनक चली गई है। तुम दोनों के आने से तो बस वो भी चले आए होंगे एक बार मिलने के लिए, तुम इतना नेगेटिव ही क्यों सोच रही हो?
अनाही ने भरे गले से कहा, आप मुझे हिदायत देना बंद करेंगे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, प्लीज़ गाड़ी जल्दी चलाइए। उसका गुस्सा देखकर वेदांत ने अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा और फिर गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ कर ली। अनाही मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो।